कोई सांसारिक चीज देंगे, किंतु किंतु वेद शास्त्र पुराण सभी कह रहे हैं गुरु जी कोई जागतिक चीज नहीं देते। जागतिक चीज देते हैं जगत में सुखी रहे लोग, और इसका अतिरिक्त आत्मा की अनुभूति देते हैं। हम लोग क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों बूढ़े हो जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्यों इतने रोग होते हैं, क्यों इतने कष्ट होते हैं, कि जगत का सबका निर्माण करने वाला कौन है, सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, सबको कौन कौन प्रवृत्त करता है। हम दुख नहीं चाहते पर फिर भी दुख आता है क्यों, इन सारी चीजों की मीमांसा वो करते हैं। इसलिए गुरु जैसा और जगत में कोई उपकारी नहीं। भगवान की सारी करुणा एक जगह एकत्रित होकर के गुरु के रूप में आई उतर करके, इसलिए वेदों में शास्त्र में शास्त्र वो धीरे धीरे हमारी आंखों को खोल देते हैं। आंख को खोलना माने क्या, आंख का खोलना माने क्या, ऐसे सुंदर ज्ञान देते हैं कि जगत में अब कोई दुखी नहीं होता, नहीं रह सकता, तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है सदा के लिए, इस काल के लिए भी परकाल के लिए भी उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। अमेरिका इत्यादि देशों में विज्ञान बहुत उन्नत है, भारतवर्ष उनकी तुलना में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो कर रहे हैं आजकल, कंप्यूटर में इतने दक्ष हो रहे हैं और सब विषयों में जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। किंतु किसी की जीवन की धारा को नहीं बदल सकते। सुखी नहीं, करोड़पति हैं, पैसा कहाँ डालें, स्थान नहीं, इतना पैसा उनके पास। हमने देखा फ्रांस में चारों तरफ में हरियाली, वहाँ पर गेहूँ कहीं लगा है, कहीं टमाटर लगा है, कहीं सब्जियाँ लगी हैं, कहीं कुछ लगा है, चारों तरफ। अमेरिका में देखा जो वहाँ पर गेहूँ तेहूँ कुछ नहीं देखा, पहाड़ हैं, एरिया है, सब मैदान बड़े बड़े हैं किंतु कुछ नहीं। मैंने पूछा जी से यहाँ पर वो गेहूँ या चावल या कोई फसल क्यों नहीं करते, उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है जो कोई बिना इजाजत के खेती नहीं करेगा। क्यों, इतनी पैदावार है, इतनी पैदा चीज़ें होती हैं कि उनको यदि मार्केट में छोड़ दिया जाए तो दो पैसे एक मन गेहूं हो जाए। इसलिए वो रेट को ठीक रखने के लिए नहीं करने देते खेती, थोड़ी सी करते हैं उसी में इतना होता है। इन सब विषय में बहुत एक्सपर्ट हैं, रुपया बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो भारतवर्ष से को आदेश देते हैं कि यहाँ से रुई भेजो, कपड़ा भेजो, और उसका मूल्य कितना, अधिक से अधिक बहुत थोड़ा सा, मान लें कि जैसे 10 करोड़ डॉलर, मान लें कि कपड़ा सारा भेजा, और वहाँ से एक विमान भेज देंगे तो उसका कितना मूल्य हुआ, करोड़ों डॉलर से अधिक एक विमान। तो वो ऐसी चीज़ें बना करके भेजते हैं, किंतु ये नहीं कर सकते जे किसी कोई आदमी दुखी है और उसका जीवन सुखमय हो जाए। चोर इतने की एक दो पैसा चोरी नहीं करते, करोड़ डॉलर से कम में वो चोरी की नहीं करते, फटफड़ी एकदम चोरी कर लेंगे सब, और उसके लिए सुसाइड करते हैं। किसी का हृदय नहीं बदलता, चोर को साधु के रूप में नहीं बना सकते। कोई आदमी का जीवन दुखी है, किसी लड़की का जीवन दुखी है, कुछ नहीं कर सकते, बल्कि और प्रॉब्लम कर देंगे। किंतु हम लोग कुछ भी नहीं है, वैष्णव साधारण एक, हम लोग उसके हृदय को परिवर्तन कर देंगे। हमसे जिनकी जिनकी भेंटें वहाँ हुई अमेरिका में, छोटी बच्चियाँ बड़ी सुंदर खूबसूरत पढ़ी लिखी, कंप्यूटर में एक्सपर्ट, सभी विषय में एक्सपर्ट, लड़के भी वैसे ही, सब लोग बड़े बड़े धनी गरीब सब प्रकार के लोग मिले, सब रो रहे थे, प्रतिदिन रोए सभी लोग। देखो इनका कैसे परिवर्तन हो गया, मांस मछली सब छोड़ करके सब कुछ। यहाँ पर हम कहते हैं कि गले में माला लो तुलसी की, कहते महाराज जी बड़ी माला चाहिए, यहाँ तक आए जो कपड़े में जिसको छिपा सकें। और पुरुषों को कहते हैं जरा चोटी रखना, तो महाराज जी ऐसा कीजिए जैसे चोटी हम रखेंगे किंतु सब केस बराबर रहेंगे, उसी में हम लोग थोड़ा सा चोटी जैसा कर लेंगे। उनको कहते हैं ये सब करो, कॉफ़ी छोड़ दो, चाय छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, सदा के लिए छोड़ दो। यहाँ पर हमको संकोच होता है कहने में, लड़कियों को जैसे कहेंगे अरे ये क्या लगाना है इसमें, और लोग पहले से सज धज करके आएंगे, कहेंगे जी हमको हरिनाम दीजिए, आप जैसा कहते हैं वैसा चलेंगे। उनका जीवन बदल जा रहा है। एक लड़की थी इससे भी छोटी उम्र की, सोल हमारी कितनी उम्र हुई है 19, और उसकी उम्र 12-13 वर्ष की, थोड़ी सी ऐसे ही लंबी, शरारी जानते हैं, बड़ी सुंदर सुकाम, और अमेरिका में उसको 500 मेडल मिले हैं। वो क्या है जाने क्या, एक चीज़ दिखलाती है कला है, कुंकुम फाइटिंग जैसा, बड़ी तेज, कल्पना नहीं कर सकते इतनी तेज, वो अंतर्राष्ट्रीय में अब जा रही। तो मैं भाषण वहाँ दे रहा था उसके घर पर, सुन करके एकदम बदल गए, एकदम बदल गए, रोती हुई आई, महाराज जी हम हरे नाम लेंगे। तो ये सब अनसंट खाए नहीं खाए, एकदम नहीं खाए। उसके सहेलियाँ आई, चलो हम लोग खेलने चलें, और अब 3-4 दिन हम नहीं जाएंगे खेल, हम महाराज जी की एक एक बात सुनेंगे। बड़ी खुशी हुई, वो आई और आकर के उसने गले में माला लिया, तिलक करके आई, बड़ी सुंदर थी घर वैसे तो गोरी, और तिलक किया, गले में माला दे दिया, और हरिनाम दे दिया, हरिनाम करने लगी। अजय इसमें बहुत आनंद आ रहा है, उसका जीवन ही बदल गया। कितने ड्रंकर कितने क्या आए, सब बदल गया। तो गुरु ये काम करता है, हृदय बदल देगा, सदा के लिए सुखी बना देगा। यह शरीर ढक्कन है, इसको हटा देगा, और उसके अंदर में सुंदर खूबसूरत आत्मा है जो कृष्ण की सेवा के लिए योग्य है, उसी के लिए हम लोग तड़फ रहे हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा, सुखी और शांति नहीं होगी राधा कृष्ण की बिना सेवा के। बड़े खूबसूरत भी हैं, बड़े गुणी हैं, बड़े दयालु हैं, गुरु ये चीज देता है। ऐसा वो देगा गुरु, प्रेम के मारे सब समय आंखों से आंसू निकलते रहे, गुरु इस चीज को दे देता है, तरल हृदय को बना देता है, प्रेम भक्ति दे देता है। यह चीज दुर्लभ है संसार में, दूसरे सब ठग हैं, सब ठग हैं, अपने भी ठगते हैं, दूसरों को भी ठगते हैं। हरि नाम से बढ़कर क्या कोई चीज नहीं है, जितने प्रकार के साधन हैं सब में श्रेष्ठ हरि नाम है। हरि नाम का आश्रय करने से सहज ही और साधु संग होता रहे, और हरि नाम हो दो, हरी कथाएं बीच बीच में सुनने को मिले, और उनके अनुगत्य में जैसा कहते हैं हरि नाम करें, जीवन एकदम बदल जाएगा, जन्म मृत्यु से भी निकल जाएंगे, कृष्ण का सत्य दर्शन होगा, जहाँ रहेंगे वहीं पर ब्रज उतर आएगा, गोपियों की दशा हो जाएगी, कृष्ण तड़फेंगे उनसे मिलने के लिए। विरह भी एक अद्भुत चीज है, बहुत अद्भुत चीज, प्रेम की ऐसी परिपक्व दशा, ऐसी प्रेम की एक परिपक्व दशा होती है जिसमें कोटि कोटि प्रलय की अग्नि को भी हरा देने वाली ऐसी कोई ज्वाला हृदय में आती है, और उससे ज्वाला से बाहर में ऐसा लगता है इतना ताप जिसको ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते, और उसमें में भीतर में एक ऐसा रसानंद का अनुभव होता है। ऐसी एक संपत्ति मिलती है जो संपत्ति विश्व के सारे आनंदों के सिर पर नित्य करती है, वो विप्रलंब भाव कहलाता है। ऊपर से कोटि कोटि प्रलय के अग्नि से भी पापकारी आर्तनाद उसमें होता है। आ रहा है समझ में? कुछ बहुत ऊपर की चीज बतला रहा है, आर्तनाद ऊपर से। अब भीतर में क्या, एक ऐसी मधुर कोई चीज रहती है जो उसको परिपूर्ण कर देता है। कृष्ण उसको देखने के लिए तड़पते हैं, कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो जाता है उससे। और इसके पश्चात में रह नहीं पाते, ऐसी वो संपत्ति प्रेम दशा होती है। इसलिए भगवान ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगा, करहिचित मैंने मुक्ति ददाति करहिचित, मुक्ति दे देंगे। भोग जगत का है, वो टूटा हुआ कांच है जिसके लिए हम लोग मर रहे हैं। भोग समझते हैं, सुख भोग, राज्य संपत्ति रुपया पैसा गृहस्थ जीवन, यदि सब बड़ी सुखी लोग हैं, ये कांच के समान में टूटा हुआ कांच जिससे लड़के खेलते हैं, हरा नीला पीला कांच। मुक्ति सोने के समान है, सोना स्वर्ण। और यह प्रेमा भक्ति क्या है, चिंतामणि से भी ऊपर की चीजें जिसकी कल्पना नहीं कीजिए सकते, जिसको देख करके भगवान तो द्रवित भूत हो जाते हैं। और साथ साथ में संसारिक लोग उपहास करते हैं, अरे ये भक्ति क्या है, ये रो रहा है, बिलख रहा है, कैसा कर रहा है, इसलिए उपहास करते हैं। इसलिए उनको कभी भी भक्ति नहीं देते हैं। उनको क्या देते हैं, यही सोना अथवा कांच देकर के बस बता देते हैं। ऐसे ये प्रेम भक्ति है, ये गुरु दे सकता है, दूसरा कोई सदगुरु देगा। हमारे गुरु तुम्हारे गुरु उनके गुरु सब बराबर हैं, ऐसा नहीं। भगवान को देने वाला जो गुरु है, हृदय में को जो बदल देता है, वो गुरु वैदिक संस्कार से युक्त और भक्ति से युक्त होता है। वो और सब गुरु बराबर नहीं है। जो गुरु इन चीज को नहीं दे सकता है, प्रेम नहीं दे सकता, कृष्ण की भक्ति नहीं दे सकता, रुपये पैसे इत्यादि देना और ये सब कर देगा, सब गुरु बराबर नहीं। जैसे सब देवता और भगवान बराबर नहीं है, वैसे सब गुरु बराबर नहीं है। जो गुरु सब समय भगवान के भजन में तन्मय रहता है और भगवत तत्व प्रदान करता है, जीवन को आनंद प्रदान करता है, जीवन को परिवर्तन कर सकता है, वो गुरु बिरले जगत में। और ऐसे शिष्य भी बिरले हैं, वो उस कीर्तन का तात्पर्य। इसलिए बड़ी जिसका सौभाग्य है वो भगवान का नाम करता है, ऐसे गुरु के समीप में पहुंच करके कुछ तत्व को समझता है। बड़े बड़े नरोत्तम ठाकुर इत्यादि, रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े बड़े राजा के लड़के, बड़े बड़े विद्वान अपने जी गुरु जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए उस कीर्तन में ऐसा रहा है, गुरु से बढ़ करके जगत में और कोई नहीं। और
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
जा रही है क्या, इसे खेल सकेगा, तुम्हारा अनंत जीवन सुखमय होगा। ये जो भावना है कृष्ण की सेवा करने से हमारा जीवन सुखमय शांतिपूर्ण हो जाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा, ये चीज भर देना किसी के हृदय में, ये भक्ति लता का बीज है। जैसे अपने सुख के लिए कोई संसारी काम करता है, नौकरी करता है, कोई पढ़ता है, लिखता है, कोई ग्रेजुएट होता है, कोई प्रिंसिपल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, पैसा कमाएंगे और सुखी रहेंगे। उसमें ये बदल करके ये भावना को भर दे, करोड़ों करोड़ों अस्पताल बनाने की अपेक्षा, करोड़ों करोड़ों धन इकट्ठा करने की अपेक्षा, यदि कृष्ण की तू सेवा थोड़ी सी भी कर देगा तो तुम्हारा जीवन शांतिमय और सुखपूर्ण हो सकता। तो उसके अंदर में यदि ये भावना आ जाए, मैं आज से ही भगवान का हरि नाम लूँगा, कृष्ण का नाम लूँगा, इससे हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सुखी हो जाएगा, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। तो इस चीज को श्रद्धा कर, ये भक्ति लता का बीज है। जो गुरु इस चीज को नहीं करके संसार के चीजों को दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, संसार के सब कुछ दें, धन दौलत रुपया पैसा ये सभी चीजें खत्म हो जाएगी इसी जन्म में। हमने देखा पाश्चात्य देशों में बड़ी बड़ी जो अगाध धनी हैं, बेटे उनके अपने बल पर काम करते हैं, बेटियां या 20 वर्ष की हो गई या हो गए तो अपने कमाने लगते हैं। एक बहुत धनी आदमी है जो हमारे साथ में चलते हैं, हॉलैंड के हैं, तो उनका बेटा आया बहुत लंबा, वो भी खूब लंबे चौड़े हैं, तो वो भी उनका बेटा भी उनसे बहुत बड़ा और मोटा, वो इनसे भी शायद 5-6 इंची लंबा होगा और शरीर भी वैसा। तो मैंने उसके बेटे से कहा कि तुम्हारे पिताजी के पास तो काफ़ी धन है, तो कुछ चाहता है ये तुम्हारे लिए दे दे अभी। तो मैंने नहीं नहीं मैं कभी नहीं चाहता, मैं अपने बल पर खड़ा हूँ, हमको पिताजी का पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास में काफ़ी है, मैं अपना सब काम कर लेता हूँ, सब कुछ, पिताजी का कुछ नहीं चाहिए। अब उसका पिताजी सोचता है जब मैं बूढ़ा हो गया अब ये पैसे को किस काम में लगाऊं, बेटा तो चाहता नहीं है, बेटी हमारी पैसे चाहता नहीं, क्या करूं, उनके लिए एक समस्या है। तो वो अब ये सोचता है कि इन पैसों को कैसे मैं इधर उधर दूं, तो इधर जाता है उधर जाता है, कहीं होटल में जाता है, कभी शीशे में जाता है, वहाँ पर पैसे को खर्च करता है। ये अपने जीवन में ही पैसे को मैं खर्च कर लूँ तो बेकार का ये क्या होगा। तो ये सब चीज़ें संसार में सुख नहीं दे सकती, क्या चीज सुख देगा। यदि कोई ये उसकी भावना है आज से मैं कृष्ण का भजन करूं, यदि आदमी भूखा भी है और हृदय में प्रेम है तो वो सुखी है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं प्यार नहीं उसका जीवन बड़ा दुखमय है। इसलिए हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध यदि प्रेम आएगा तो सबसे वो प्रीति करेगा, सबसे प्यार रखेगा, और जिसके हृदय में भगवान से प्रेम ही नहीं है, नास्तिक है, वो सुखी नहीं रह सकता, दूसरों को सुखी नहीं रह सकता। यही हमारा प्रचार का मूल शब्द, विश्व भर का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म क्या है, ये प्रेम है। प्रेम और सुख दोनों एक पर्यायवाची शब्द है, यथार्थ सुख को आनंद कहते हैं। आनंद कहाँ होगा, यहाँ पर दो आदमी है उसमें आनंद होगा, एक अकेले आदमी यदि है और कुछ नहीं है तो उसमें भी यदि कृष्ण का वो यदि स्मरण करता है तो दो हो गए, कृष्ण हो गया एक हो गया, तब तो उसके जीवन में आनंद और प्यार हो सकता है, सबसे आनंद और प्यार से। और जिसके हृदय में ये चीज नहीं है, ज्ञानी हो धनी हो तभी वो आनंद से नहीं रह सकता। इसलिए जीवन मात्र का धर्म है प्रेम, इस प्रेम को शुद्ध करके कृष्ण के चरणों में लगाना है। ये कैसे होगा, हरिनाम संकीर्तन, आप एक हरिनाम महामंत्र का बोलिए। एक सरोवर है बहुत बड़ा, करीब करीब 10 माइल लंबा, 10 माइल चौड़ा एक सरोवर है, साथ लेके तो चलते थे। और उस सरोवर में मैंने एक पत्थर उठाया और एक किनारे पर मैंने फेंक दिया, जब सरोवर के पानी में जब वो पत्थर छप करके गिरा तो उससे क्या होगा,
सभी बड़ा रतन करना। क्या आज मतलब
फेंक दिया वो पत्थर तो क्या होगा,
तरंगे निकलेंगे,
तरंगे निकलेंगी ना, कितनी तरंगे निकलेंगी, अनगिनत तरंगे निकलेंगी। और वो तरंगे क्या कहाँ तक जाएंगी, 10 मील का यदि सरोवर है तो 10 मील जा करके उसके एंड को छोर कर वो टकरा जाएंगी, टकराएंगी ना, एक दो तरंग नहीं बहुत सी तरंगे उसमें उठते ही जाएंगी और चलती जाएंगी। ऐसे हमारा एक दिल सरोवर है और ये सारा विश्व ब्रह्मांड अगिनत एक दो नहीं, ये एक सरोवर आकाश के अंदर कद है। इसमें हरि नाम का एक पत्थर यदि छोड़ दिया गया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 राम,
क्या होगा बेटी उसकी तरंगे जो उठेगी, एक तो हृदय रूपी सरोवर में इसको जहाँ तक जाएगी वो तरंगा यहाँ से उठ करके वहाँ तक मिलेंगी ना, और सारे विश्व में उसकी तरंगे जाएंगी। इसे क्या होगा, ये जो साउंड आ रही है तरंग से है ना, हाँ तरंग से आ रही, और हम जो अमेरिका में जो काम हो रहा है, अमेरिका से जब टेलीविजन और जो शब्द सुन रहे हैं, ये कैसे आ रहा है, हवा के तरंगों पर आ रहा है ना, ये किरक तरंगे जो हैं इससे लाखों कोटि गुण शक्तिशाली हैं महामंत्र की हरि नाम की, और वो साधु गुरु के द्वारा वो यदि प्रस्तुत की हुई हो, यदि उसने यदि हरे नाम का ढेला यदि छोड़ दिया है इस जगत में, तो वो इतनी तरंगे जोर से उठेंगी। भाई क्या गड़बड़ कर रहा है भाई, छोड़ो, ये तरंगे की ध्वनि हृदय को निर्मल करती है, हृदय को बदल देगी, और सारे विश्व में जितना ये प्रदूषण या क्या कहते हैं, प्रदूषण मैंने क्या, क्या कॉल्यूशन मैंने क्या होता है, तो ये कैसे गंदगी आई है, कैसे आई,
पहले
हृदय
में गंदा पत्थर डाला था तो उसी की तरंगों से सब जगह गंदगी फैल गई है, अब हरिनाम
में चारों तरफ में मर, बदमाशी, चोरी, झूठ, बेईमानी, अमेरिका इत्यादि देशों में हजारों आदमी मिल करके ड्रिंक करके ये ड्रिंक करके और नाचते हैं, क्या क्या करते हैं नाइट क्लबों में, ये सब क्या है, प्रदूषण है शब्द का, और भावना का एक होता है दूषण, सबके हृदय में ये दूषित भावना है, कैसे दूसरों को ठगें, कैसे धनी हो जाएं, कैसे क्या करें, कैसे सुखी हों, उसके लिए नंगी होकर के भी स्त्रियां डोल रही हैं पाश्चात्य देशों में, गाय बैल भैंस में भी कोई नियम है, बंदरों में भी कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, इस जागतिक सुख के लिए ये सब दूषण है, एक भाव का दूषण और एक शब्द का दूषण। भगवान के नाम का जो संकीर्तन की ध्वनि अभी जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इसकी ध्वनि क्या हो रही है, लोगों के हृदय में जा रही है जो इसको सुन रहे हैं यहाँ, और विश्व में इसकी तरंगे जो उठ रही हैं एक छोर से विश्व के दूसरे छोर तक जरूर पहुँचेंगी, चाहे गंदी बात हो चाहे अच्छी बात हो जरूर होगी, किंतु उनसे ये शक्तिशाली तरंगे हैं भगवान के नाम, वो इस तरंग से यहाँ से उठ करके और सारे विश्व को संस्कार शुद्ध बनाती है। यदि आज ये हरि संकीर्तन का प्रचार विश्व में नहीं होता, जो लोग हरि नाम नहीं कर रहे हैं, यदि नहीं होता ये ऐसा, हम लोग जो प्रचार कर रहे नहीं होते और हमारे जो शुद्ध भाव जो है नहीं होता, तो अब तक विश्व में लाखों बार प्रलय हो चुका होगा, जरूर हो गया, इनको ये बचाए रखे हैं लोग, आदमी नहीं समझते, साधु क्या करते हैं, उन देशों में ये प्रचलित हो गया है, जो कुछ नहीं करता है, जो सब काम छोड़ देता है, इसका नाम है डिवोटी। डिवोटी लोग क्या करते हैं,
कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे कहीं जमान करके जाएंगे, बस ये डिवोटी,
इसी तरह से यही इच्छा, ये एटम बम से भी अधिक शक्तिशाली चीज है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं, जो शब्द होते हैं, भगवान का कीर्तन होता है, और जो भाव इतनी प्रबल होती हैं कि लाखों लोगों के हृदय को एकदम झटपट, झटपट जानती है, झट और पट, झट पट फट फटाफट, एकदम इतनी पावरफुल चीज है। हमने देखा जी मिराकल एकदम मंत्र जैसा, जहाँ जहाँ गया लोगों का हृदय एकदम बदल गया ये कीर्तन सुनकर के, इसलिए बड़ा भारी शक्तिशाली ये ढेला है, और ये विश्व रूपी आकाश जो है ये सरोवर है, इसमें एक ढेला फेंकने से उसकी जब तरंगे उठेंगी सारे विश्व में जाएंगी, और जितने प्रदूषण हैं सबको ये शांत करके निर्मल बना दिया। आज ये नहीं होता तो विश्व में आज आग लग गई होती, प्रलय हो जाता। विशेष करके इस कलि युग में महाप्रभु जी नहीं आएंगे, किस लिए नहीं आएंगे? कल के अवतार नहीं आएंगे, किस लिए? क्योंकि एक नाम संकीर्तन से ही युग का धर्म है अपने आप इसमें आ गया, इसलिए कल जी नहीं आएंगे। देखो आप 5000 से बेसी, करीब करीब 5000 वर्ष होने जा रहा है कृष्ण का जन्म, अभी तक संकीर्तन हो रहा है, देशों में भी विदेशों में भी देखा है, और लाखों लोग अभी हैं जिनका हृदय बड़ शुभ भगवान पर विश्वास रखते हैं। इसलिए अभी कलयुग का प्रभाव नहीं तो लड़कियां महिलाएं अपने बेटे को काट करके खा जाएंगी एक दिन, ऐसा धर्म कर्म नाम का कोई चीज नहीं, ऐसा हो जाता। अभी भी स्त्री पुरुष में कुछ कुछ स्नेह है, कुछ है ममता है। इंग्लैंड में जाएंगे देखेंगे ये कोई शान नहीं, एक स्त्री के लिए 10-15 बार 20 बार पति बदल देना और पति के लिए स्त्री बदल देना कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ तो तूफान खड़ा हो जाए। अभी है अभी कुछ तो इसलिए अभी भी कुछ है, इसलिए सबसे शक्तिशाली तरंग भगवान के नाम की है। यदि हम लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे अपना हृदय भी शुद्ध होगा और भगवान भी बड़े प्रसन्न होंगे और जगत ठीक रहेगा। इसलिए साधु संत लोग चुपचाप बैठने पर भी बहुत काम करते हैं जो साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते, इंजीनियर नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बिना पैसे का ये शुद्ध कर रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी पानी लेकर के उसको शुद्ध करके पानी का मूल्य कितना लेती है आप लोग जानते हैं? ये जो पानी आपके घर में आता है बिना पैसे का नहीं आता है, ये बिजली गवर्नमेंट ने कहाँ से निकाली, कहाँ से दिया, इसका पैसा क्यों लेती है? भगवान पैसा लेते हैं? ये कहाँ से लेते, क्यों लेते? हवा कौन दे रहा है? हवा इन लोगों सप्लाई कर रहे हैं। अब ये पंखा दे दिया ना तो आपसे चार्ज करेंगे बिजली का, ये पंखा चल रहा है, किंतु भगवान ने दिया है उसको क्या दे रहे हैं? इन्हें सबको भगवान का आभारी होना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और भगवान सुनकर के बड़े प्रसन्न होंगे, जगत का इसी में कल्याण है। जय जय राधा, जय 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 है, बोल देखा जी वहाँ पर करीब करीब 100 लोग मृदंग और करताल लिए हुए स्वागत कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, और सब लोग वहाँ के देख रहे हैं एयरपोर्ट के, भाई ये कौन से कीर्तन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनके समझ में नहीं आया। वहाँ से जब हम लोग गए जहाँ हम लोगों का रहना था, वहाँ पर कितने लोगों को 250-300 लोग सब समय इकट्ठे रहते थे सुनने के लिए, कितनी आकांक्षा, 7-8 दिन के लिए घर से वो लोग पूरे एकदम चले आए जहाँ पर हम लोग थे। यहाँ तो मुश्किल है ना, अभी यहाँ पर कहते हैं अभी एक दिन रह जाओ, आज
आप भी कहते थे
महाराज
जी
कर
जाओ
सब लोग चले जाएंगे, कहेंगे अभी जाओ तो भी, इसलिए मैं देखता हूँ कि जैसे यदि कह दूँ जैसे मत जाओ भाग तो तुम गड़बड़ हो जाएगा, वो मान नहीं सकेंगे। वहाँ पर सब व्यवस्था करके सारी बात है, माँ हो ना हो सब चले आए। वहाँ पर जब प्रचार हुआ देखा जी यहाँ पर तो बहुत अच्छा प्रचार हुआ, सबसे अच्छा यहाँ, फिर वहाँ से गया अमेरिका में तो देखा जी वहाँ से भी फिर वहाँ से गया कोस्टारिका, एक ब्रह्म अमेरिका के दोनों अमेरिका के बीच में वहाँ देखा जी, और भी वहाँ पर कब तो शहनाई या क्या बाजा गिटार इत्यादि 10-15 लेकर के रॉयल ड्रेस में सजे हुए वहाँ के लोग, और वो कीर्तन तो अलग, और वो सब अपने धुन पर 10-15 मिल करके गा रहे हैं। आज हमारे देश का सौभाग्य है कि आज कोई कौन दूत ना गा रहे थे, कितनी धुन गा रहे थे और सब नृत्य कर रहे थे, जब भाषण देता था चुपचाप सब हम लोग वो तो चेक करते हैं ना, वाणी नहीं देते, और जब दिखा इतनी भीड़ और आप लोग कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं गा रहे हैं जैसे आप लोग को चेक कर रहे हैं, आप जल्दी से जाइए और इतने और हम निकल नहीं रहे हैं और कीर्तन धूमधाम। वहाँ पर कुछ ऐसा नियम है जो स्त्रियाँ भी पुरुष भी परस्पर वालिंगन पास में बद्ध होते हैं, उनका चुंबन करते हैं, वो भी उनका चुंबन करती है, ये कोई खराब से इसमें नहीं लेते। एक बूढ़ा भी अपनी बेटी को भी गले से लगा करके चुंबन करेगा, एक कोई मित्र मिल गए तो भी करती हैं। वो सोच रहे थे जैसे महाराज जी को भी ऐसे ही किया जाए। मैं तो बड़ी मैं क्या करूं, पुरुष तो आ करके ऐसे पकड़ रहे हैं तो मैं भी उनके सिर पर हाथ रख रहा हूँ, कल्याणम भवतु कल्याण। और स्त्रियाँ आ करके मैं एकदम ऐसा चाहें जैसे वो भी हमको पकड़ करके जैसा करती हैं, मैंने ऐसे उनको कर करके बड़ी मुश्किल। तब धीरे 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 कितना उत्साह कितना क्या, सब के सब सब लोग बदल गए। आते समय में कितने रो रहे, वहाँ से अमेरिका में फिर आया, फिर वहाँ से वाशिंगटन गया, वहाँ के लोग भी पंडित जी के चाचा जी के घर में गया, वो लोग तो पहले गाय के मांस का बिजनेस करते थे, नौकरी जो कर रहे हैं उससे पैसा काफी आ रहा है, इंजीनियर हैं और वहाँ के नेवी में काम करते हैं, उनकी पत्नी भी कुछ काम करती हैं। तभी और साइड बिजनेस के लिए एक बिजनेस खोल रखा था, मैंने सुना था ये तुम अपने जीवन को अंधकार में कर रहा, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है, ये गायों को कटे हुए का तू बिजनेस करता है, और कोई तुमको बिजनेस नहीं था, बिजनेस नहीं तो तुमको क्या कमी है, तुम तो इतना रुपया पाता है, तुम अपने बच्चों का जीवन सदा के लिए नष्ट कर रहा है, और अपना जीवन भी वहाँ घोर नरक में जाना पड़ेगा, और तुम गाय बन करके आएगा और तुमको ये लोग काटेंगे। वहाँ पर देखा जो लाखों लाखों गायों को कभी कभी ट्रक में ले करके जाते हैं, वहाँ पर गायें हैं हॉलैंड में तो 40 केजी दूध देती हैं एक एक गाय, 60 तक मशीन से दूध ना पड़, इतना उनका थाम देख करके लोभ होता है जो भारतवर्ष में ऐसी गायें हैं, और जब वो पुरानी हो जाएंगी तो उनको ले जा करके काट देते हैं। अच्छा तो इतनी गायें हैं वहाँ पर, ये गाय क्या है, वो जो पुरुष लोग जिन लोगों ने काटा है और जो मांस खाए वो सब गाय होते हैं, और वो फिर उनके हाथ से काटते हैं, ये लोग नहीं समझते, उनको बतलाया तो उसी समय से बंद कर दिया, हरिनाम मांग रहे हैं, हरिनाम ऐसे नहीं दूंगा, पहले शुद्ध हो, तुम लोग इस काम को छोड़ो, बस उन्होंने काम को छोड़ दिया। तो इस बार ले गए थे उनकी लड़की, दो लड़की लड़का, वो उनकी पत्नी, सारे लोग हरिनाम दिया, गोपाल मान भी दिया, एकदम बदल गए। पिछली बार एकदम जीवन ही उनका बदल गया, ऐसे कितना परिवार, एक दो परिवार नहीं हजारों परिवार ऐसे बदल गए जो हरिनाम अब कर रहे हैं, चाय तक नहीं छूते, कॉफी नहीं लेते, सिगरेट नहीं लेते, बीड़ी नहीं लेते, हृदय एकदम अपने आप पवित्र हो जाएगा। ये जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं कहाँ से आई, किस लिए आई, अपने कर्मों का फल है। कोई आदमी हमसे बुरा व्यवहार करता है, वो आदमी नहीं बुरा व्यवहार कर रहा है, हमारा कर्म उसे करा रहा है, इस चीज को समझना चाहिए। जितने भी बुरे कर्म अभी जो हम भोग रहे हैं या कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, पति छोड़ देता है, स्त्री छोड़ देती है, सुसाइड कोई कर लेता है, कोई कुछ होता है, दूसरे जो कष्ट देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, कोई आदमी गरीब है, कोई धनी है, ये किस चीज का फल, भगवान को भूल करके इस जगत में आया और ऐसा कर्म किया, उसका फल आ रहा है, इसलिए वो दोषी नहीं है, दोषी कौन है, मैं दोषी हूं अपने कर्म, ये सब चीज समझे तो कोई किसी का शत्रु नहीं रह जाएगा। हम वैष्णव में भी ये चीज नहीं है, वैष्णव लोग भी अपने को शत्रु समझ, क्योंकि इन चीजों को नहीं समझते हैं, इन चीज गीता ने सबसे पहले यही चीज समझाया, स्थिति प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव किमाशेत किम ब्रजे, गीता लोग पढ़ लेते हैं जैसे इसे सुख और शांति होगी, समझते नहीं है उसको पालन करना चाहिए। लाखों लोगों का जीवन एकदम बदल जाता है, इसलिए कोई किसी का शत्रु और मित्र नहीं है। कौन है? मना ये मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्ष है। हम अपना कर्म पहले का जो हमने कर्म किया है अपना कर्म, इसलिए हमारा भी कर्म अभी खोटा है। क्यों? अभी बूढ़ा होना पड़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा बूढ़े होंगे कि नहीं, बुढ़े बूढ़ा होना पड़ेगा, रोग से जर्जर हो जाएगी। अभी कितनी, अभी अभी तो आप पागल नहीं हो गए, इतनी अभी समस्या आ रही है। देखो जो पागल हो जाना पड़ेगा, इन सबका एक रेमेडी है कि हरे राम कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते बता। हरे नाम के बिना कुछ भी तरह से भी सुख और शांति, इसलिए इसको संसार में सबसे अमोघ औषधि समझेंगे। अमोघ औषधि माने क्या? अचूक राम बाण है। इसे बढ़कर के सुखी शांति होने के लिए कोई दूसरा उपाय, इसलिए बचपन से हो बूढ़े होकर के हो प्रौढ़ अवस्था में समस्त रोगों का एक दवा है दस मूल, राम नाम कृष्ण नाम। या एक बार और दूसरे स्वर से, इसके बाद आप तैयार रहें। हॉलैंड में एक मेरे पास में एक महिला आई, प्राउड महिला, वो डिवोटी तो हैं किंतु बड़ी दुखी रोती हुई आई और मुझसे पूछा, महाराज जी मैं इस फोन में बहुत से सब लोगों के पास में गई और एक प्रश्न किया, उसका उत्तर हमने किसी ने नहीं दिया, मैं किसी के भी उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, मैं हार करके अंतिम बार आपके पास में, हमारा जीवन घोर निराशा छाया हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ, दिन रात रोती हूँ कलपती हूँ, कोई सहारा नहीं। मैंने स्वामी जी से हरिनाम लिया किंतु क्या स्वामी जी सर्वज्ञ थे, जानते थे, सदगुरु थे? गुरु तो सर्वज्ञ होता है, और विशेष करके स्कूल के जितने लोग हैं कहते हैं कि हमारे गुरु जी सर्वज्ञ थे, भगवान के विशेष शक्ति थे, जगत के कल्याण करने आए। तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि जिन सन्यासियों को मैं सन्यास दे रहा हूँ वो सन्यास छोड़ करके घर लौट जाएंगे और गंदी फिर बातें करेंगे, संसार में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो क्या सर्वज्ञ नहीं थे? जब ये मैं विचार करती हूँ तो हमारा बहुत निराशा हो जाता है, उनसे विश्वास हटने लगता है। उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की जिसमें फ्रांस के एक गुरुकुल में 300 शायद लड़के या कितने रहते थे, और वहाँ पर 300 डिवोटी थे, वहाँ पर कितनी गायें थीं, कितना वैभव था। उस गुरुकुल का ये तमाशा हुआ कि वहाँ के लड़के दुष्चरित्र निकले, वहाँ के प्रोफेसर और पढ़ाने वाले भी दुष्चरित्र, और केवल बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो स्वामी जी जब पहली बार आए, जैसे ये स्कूल जो है बहुत अच्छा है गुरुकुल, यहाँ पर तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ, और हमने भी अपना बच्चा दिया, हमारा जीवन बच्चा हमारा इतना बिगड़ गया, चरित्र से हीन हो गया, मदिरा पीने लगा, और उसका जीवन एकदम घोर बर्बाद हो गया। क्या स्वामी जी नहीं जानते थे? तो स्वामी जी जानते थे, क्यों कहा ये स्कूल ऑथेंटिक है और ऐसे है? हमको कोई उत्तर सेटिस्फैक्ट्री नहीं। मैंने कहा अभी तो हमारा सोने का समय हो गया, खाने पीने का, तुम कल खाना। सचमुच मेरा समय हो गया था, समय नहीं था। तो जहाँ पर 300 350 400 आदमी डिवोटी बैठे थे, मैंने ये प्रश्न वहाँ पर किया, और वो भी बैठी थी वहाँ चुपके में सुन रही थी। तो सब लोगों से कहा, नवीन जी ने भी कहा, और लोग वहाँ के जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित और पुराने पुरंदर थे, उन लोगों से किसी से वो सेटिस्फैक्ट्री उसको नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। तो मैंने दो शब्द कहे तो उसी में शांत होकर के आई, चरण पकड़ लिए, रोने लगी, जैसे महाराज जी आज हमारा हृदय, आज स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा बढ़ गई और हमारा जीवन बच गया, नहीं तो मैं अभी छोड़ने वाली थी, और छोड़ करके और मैं भगवान का भजन संपूर्ण से छोड़ू, हमारा जीवन बर्बाद हो चुका था। तो उसमें फिर मैंने थोड़े से 5 मिनट मैंने बतलाया, उसमें सभी लोग बहुत संतुष्ट हुए और सबकी स्वामी जी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। उनका कहा ये स्वामी जी की सेवा है, उनको ग्लोरीफाई इस कोन वाले नहीं कर सकते कोई। मैंने कहा बहुत अधिक कहा तो अभी थोड़ा सा उसमें से दो एक बतला रहा और कल बतलाऊंगा, अब समय हो गया है, अब तो 8 बजे में जा रहा है शायद, पौने 8 बजे 7:30 बजे वो कीर्तन समाप्त होते होते 8 बजे जाए। मैंने बतलाया ये प्रश्न आज का नहीं बहुत पुराना है, कृष्ण के समय में ये आया कि कृष्ण क्या ये नहीं जानते थे भगवान होकर के कि ये बच्चे लोग बड़े गड़बड़ करेंगे और ऋषियों का अपमान करेंगे और ऋषि लोग अभिसंपात करेंगे, क्या करेंगे, तेरा वंश इसी से ध्वंस हो जाएगा। सांब को बना करके लड़की 16 वर्ष का बड़ा खूबसूरत उसको लड़की सजा दिया, लड़की सजाने के बाद में उसके पेट को जरा बड़ा कर दिया, कोई चीज बांध दिया लोहे का तवा या कुछ, और जा करके उससे बोले जैसे ये लड़की का नया विवाह हुआ है, इसका पहला बच्चा पेट में आया है, आप लोग तो बड़े साधु हैं, आप बतला दी इसको बेटा होगा कि बेटी होगी, ये बड़ी लजाती है इसलिए ये पूछ नहीं रही है, किंतु हम लोगों से कह रही है जो मैं जानना चाहती हूँ कि हमको बेटा होगा कि बेटी होगी। तो उसमें कौन कौन से थे, नारद जी भी थे, हो सकता है कि व्यास जी भी हों, उसमें दुर्वासा जी थे तो एक बार कहा कोई बात नहीं, जब 4-5 बार जबकि बोला अपमान करने के नियत से बोला, साधुओं को परीक्षा कर, परीक्षा नहीं, आज जैसे होता है ना जो साधु बाधु कुछ नहीं मानता, हरिनाम करते हैं बेवकूफ होते हैं, अब दूसरों के घर में जा करके मांगते हैं, ऐसे ये अविश्वास की बात थी, इनको हम उपहास करेंगे इसलिए वो उपहास कर रहे थे। तो दुर्वासा जी से रहा नहीं गया, वो तो शंकर के अवतार हैं, कहते जाओ इसके बेटा और बेटी नहीं होगी, इसके पेट से मूसल पैदा होगा और मूसल ये तुम्हारे ज्योतवंश का ध्वंस का कारण होगा, देख करके डर गए। डरने के बाद में उग्रसेन से जा करके बोले महाराज ऐसी बात है, हमने इसको पेट निकाल करके फिर देखा तो इसमें सचमुच में एक मूसल कहाँ से आ गया, बांधा तो हमने तवा, तवा रोटी सेकने के लिए भाई, और इसमें निकलाया मूसल कहाँ से, और वो कह दें यार ऋषियों ने जिसे जिसे मूसल मूसल पैदा होगा तेरा वंश ध्वंस होगा, ये तो बड़ी भारी गड़बड़ी, अजय कृष्ण से मत कहना, कृष्ण से कहा तो नहीं, अच्छा कृष्ण से नहीं कहा, कृष्ण से नहीं बतलाया, उग्रसेन ने कहा इस मूसल को जला दो, जला दिया, जलाने के बाद में कहा जैसे ये इसका लोहा जो बच गया है इसको रगड़ करके इसको धूल बना दो, पूरा से धूल बना दिया, किंतु अंत वाला जो था घिसते घिसते इतना छोटा हो गया जैसे वो मरक करके ये किसी पात्र में और समुद्र के बीच में फेंका हुआ, तो जो जल गया था मूसल वो रात और किसका चूर्ण सबको लेकर के नौका में बैठ करके बीच समुद्र में उतर गया, किंतु समुद्र का होता है आज नगद कल उधार ऐसा नहीं क्या होता है, उधार उधार कोई चीज नहीं, बस तो उन्होंने डाला और वो फेंक दिया किनारे में, उसका जो चूर्ण था वो बड़ी बड़ी घास है, घास नहीं वो ईख के पत्ते जैसा, और वो उसमें था आदमी कट गया, और वो जो जो लोहा का जो था वो फेंका एक मछली निकल गई और उसका पेट बड़ा हो गया, तो किसी इतना देरी मछली खा गई, मछली का पेट चीर करके मल्लाह ने धीवर ने उसको अपने बाण की नोक में लगा दिया, और ये लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, दान पुण्य किया, समुद्र में स्नान किया, जदुवंशी लोग सब, केवल बूढ़े रह गए कुछ, और मदिरा पान करके और परस्पर लड़ काट करके उसी से। तो कृष्ण को पता था कि या नहीं, वो बच्चों के जाने के पहले उनको मना क्यों नहीं कर दिया, मना करने की बात ही, तो मना क्यों नहीं कर दिया। और इतना बड़ा भारी महाभारत युद्ध हो गया, व्यास चाहते तो बंद कर देते वो शक्ति थी, और कृष्ण भी सुलहनामा कराने के लिए गए थे, तो वो पहले ही द्रौपदी को रोक देते, ये तुम गंदी ये बात मत करो, जो अंधा का पुत्र अंधा होता है उसको पहले ही मना कर देती, तो ये बात महाभारत की युद्ध नहीं होता। तो ये कृष्ण को पता नहीं था, और कृष्ण क्या भगवान जो विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करने वाले हैं, झूठी बात। एक महाभारत जैसे युद्ध को उन्होंने रोक नहीं दिया, लाखों आदमी को कटने दिया, और कृष्ण उसमें स्वयं भिड़ गए, तो कृष्ण को पता नहीं, ऐसा नहीं। भगवान का भक्त अंतर्यामी और सब शक्तिशाली होता है, और भगवान के जो परिकर होते हैं वो भी शक्तिशाली होते हैं और सब कुछ जानने वाले होते हैं। जशोदा मैया कृष्ण का कान पकड़ रही है, तुमने मक्खन क्यों चुराया, गोपियों को घर में क्यों गया, और कृष्ण शिशक शिशक क्यों रो रहे हैं, ये क्या चीज है। इसलिए भगवान की लीला में मुग्धता और सर्वज्ञता दोनों और सर्वशक्तिमत्ता सभी चीजें एक साथ में रहती हैं। मुग्धता माने क्या, अज्ञान जैसा चीज, और सर्वज्ञता, सर्वज्ञ सब कुछ भविष्य जानने वाले, ये भगवान में सब समय रहेगी। किंतु जोग माया कुछ ऐसे कार्य कराती है उनकी नरलीला, जिससे कि कृष्ण को भी पता नहीं होता जे मैं भगवान हूँ, इसलिए जसोदा जी कान पकड़ते हैं, वहाँ रोकर रोते हैं, उनकी सर्वज्ञता भी, किंतु फिर भी सर्वज्ञता उनमें अनुस्यूत होती है, अर्थात उसमें लगी नहीं रहती, और समय में जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। किंतु जसोदा मैया जब उनको पकड़ करके बैठा रही है, बैठ, मैं जरा दूध को बचा करके आऊँ, चूल्हे पर रखा है, तो कृष्ण सर्वज्ञ और इतना सर्वशक्तिमान होते हुए भी वहाँ पर चुपचाप बैठ गए, असहाय होकर के, उनमें बल यही था जी जसोदा जी को के स्तंभ को छोड़ दें, जबरदस्त उठा करके बैठा, अब उतना नहीं छुड़ा सकी, उतना छुड़ा सकी 10,000 हाथियों का बल नहीं छुड़ा सकी, और जो बैठ बस, ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, भगवत्ता और मुग्धता सब एक साथ में रहती है, जब जरूरत होती है जोग माया उसको ऐसे कराती है। तो ये मत समझो ये छोटा सा बच्चा कृष्ण सर्वज्ञ नहीं है, उतना क्या नहीं, पहले जसोदा मैया को कह देता कान में, ये मैया वो आ रही है, क्यों नहीं कहा। इसलिए ये मुग्ध भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो ऐसे ही शक्तिशाली होते हैं, किंतु मध्यम अधिकार में आकर के उसको प्रचार इत्यादि करते हैं जगत के कल्याण के लिए। इसलिए उनमें ये दोष नहीं है, मध्यम अधिकारी के होने से अपनी सर्वज्ञता को छिपा करके रखा है नर लीला के बल, नहीं तो फिर वो प्रचार नहीं कर सकते थे, संभव पर नहीं था, इसलिए वो भी छिपाए नहीं है, बल्कि जोग माया ने उसको रखा है। यदि ऐसे नहीं है तो गुरु भी नहीं है, गुरु भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक होता है सचमुच में कुछ नहीं जानता, और एक होते हैं सर्वज्ञ हैं, वो भगवान की कृपा हैं, उनकी शक्ति हैं, वो लोग जगत में नारद जी जैसे रूप, गोस्वामी सनातन जैसे अवतरित, वो तो असल गुरु हैं, उनमें ये सब कुछ हैं। कुछ लोग होते हैं मध्यम अधिकार वाले, वो सर्वज्ञ नहीं हैं, वो किसी को कहते तुमको प्रेम हो जाए, नहीं होगा, साधन कराएंगे सिखलाएंगे अपनी शिक्षा से उसे उसका हृदय बदल करके धीरे धीरे उठाएंगे। और कनिष्ठ अधिकारी गुरु सजकर, जैसे नारद जी ड्रामा के नारद और असल नारद में अंतर है ना, तो वैसे जो गुरु का पोजीशन समझ करके बड़ा इनका आदर हो रहा है, मैं भी गुरु बन जाऊं, दो चार याद कर लिया श्लोक, दो चार कुछ इधर का उधर कर कर करके जो बोलना सीख लिया, कीर्तन सीख लिया, और सीख करके बस गुरु बन जाते हैं। इन जैसे गुरु लोगों का पतन हो जाता है, ये लोग यथार्थ गुरु नहीं है। अंततः मध्यम अधिकारी उन्नत कोटि का होना चाहिए, तो वो गुरु जो हैं जिसके लिए कहा गया है, ये गुरु सर्वज्ञ होते हैं, सर्वशक्तिमान, वो किन के लिए कहा है? नारद जी जैसे गुरु लोगों के लिए, रूप सनातन इत्यादि के जैसे लोगों के। यदि स्वामी जी को ऐसा भी मान लिया है तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत शक्तिशाली नहीं होने से विश्व में प्रचार किया, ये तो किया, इसलिए उसमें दोष नहीं है। क्यों? नीचे उतर करके और सबको शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वो जानते हुए भी इच्छुत को रखते हैं प्रचारक होने के नाते, नहीं तो प्रचार नहीं कर सकते थे। एक बात और उसमें, जो मान ले कि जिसका चरित्र खराब हुआ, बदमाश बन गए, यदि स्वामी जी के एसोसिएशन में नहीं आते तो क्या होता? और भी ड्रिंक करते, और भी न जाने क्या उत्पात करते। वो तो आने से कुछ संभल तो गए, और उनकी वो सुकृति बनी रहेगी जो आगे के लिए बनी रहेगी। यदि उन्होंने अपराध नहीं किया, मदिरा पान करना या कुछ चरित्र का ही नहीं होना, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं, ये तो झट ठीक हो जाएगा हरिनाम के द्वारा। इसलिए यदि मान लें कि कुछ ऐसा व्यक्ति भी है तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उसका जन्म जन्म सुधर गया, ठाकुर जी का प्रसाद हजारों बार खाया, भगवान की कथा सुनी, और जैसे तैसे हरिनाम तो किया, नमाभास भी हो, नमापराध भी हो, नमापराध आदि और सब बुरा कर्मों के अपेक्षा लाख गुना अच्छा है। उससे धीरे धीरे नमाभास होकर के धीरे 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 जीवन में उन्नत हो जाएगा। तो ये सब उसको सुयोग मिला, इसलिए सुयोग को क्यों स्वामी जी कटने दें? आ रहा है समझ में? क्यों कटने दें? इसलिए जानबूझ करके रखा, ये तो होगा ही, किंतु इसको महान फल मिल जाएगा कि भगवान को नाम सुनने मिल जाएगा और महाप्रसाद मिल जाएगा, कुछ दिन की भोटी में रह जाएगा, उसमें एक संस्कार हो जाएगा, ये पतन होने पर भी वो संस्कार काम करेगा, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, लाखों जन्मों में उसका जीवन सुधर जाएगा। ऐसे ही युक्ति दे करके उसको समझा बुझा करके एकदम सभी लोग प्रसन्न हो गए, स्वामी जी की ग्लोरी रही। दूसरे से पूछने से इसको उनका कोई भी व्यक्ति इसको अच्छी तरह से सामंजस्य करके नहीं बतला सकता, क्योंकि उपलब्धि नहीं है उनकी, अपने भी जो आस्था है, विश्वास है, वो डगमगा रहा, वो दूसरों को क्या संभालेंगे। वहां पर जितने लोग थे बड़े प्रभावित हुए, बड़े, और सब लोगों ने कहा जैसे आज से स्वामी जी के प्रति हमारी श्रद्धा, और उनसे भी बढ़ करके आपके प्रति हमारी श्रद्धा होगी जी, हमारे इष्ट